जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, राधा माधव कुंज विहारी, Rama, Rama, Hare राधा गोपीनाथ की जय गोमिता की जय शील प्रभुपाद की जय नितय गौर प्रेमानंदे हरि हरि सुदर्शन बंदि गौरी समस्त उपस्थित भक्त वृंद की
हरे
गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओ। हरे कृष्णा समय पर या समय से भी पहले आए हुए आप सभी भागवत कथा प्रेमी भक्तों का आज के भागवत कथा के द्वितीय सत्र में जो पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत और पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिवस पर आप सभी का बोलने वाले बच्चों का शोरगुल करने वाले बच्चों का नहीं स्वागत लेकिन अभी सब बाकी सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत का ये अजामिल उपाख्यान एक विशेष कथा प्रसंग है। जो हरि नाम की महिमा की स्थापना करता है उदाहरण के साथ, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने ये उदाहरण चुना है अजामिल। ऐसे कई है हरि नाम का महिमा स्थापित करने के उदाहरण। वाल्मीकि भी है जो राम राम भी नहीं कह पाए, क्या कहने लगे, मरा मरा ही कह रहे थे। अरे और जगाए मधाए भी रहे 500 वर्ष पूर्व। मृगारी, मृगारी द हंटर, मृगारी का कथा सुने, मृगारी मृगारी फिर नारद मुनि ने उसको दिया मंत्र और कैसे परिवर्तन हुआ उसके जीवन में। हरि नाम कई महिमा है, कई सारे उदाहरण। हम सारे उपस्थित भक्त भी एक एक उदाहरण है ही। हम क्या थे और अब क्या बने हैं, कुछ परिवर्तन हुआ है। ये सब हरि नाम का ही फल है। और चैतन्य महाप्रभु का चरित्र, चैतन्य चरितामृत तो कई सारे उदाहरणों से भरा हुआ है। तो कन्याकुब्ज कन्नौज के निवासी दासीपति अजामिलः कली इतिहास प्रारंभ हुआ। इसका चरित्र को हम कुछ श्रवण कर चुके हैं और कैसे उसने अपने दसवें बालक का, जब वो 88 वर्ष का था, दसवां पुत्र हुआ, उसका नाम रखा, क्या नाम रखा था? नारायण, नारायण, नारायण तो हुआ। और इस पुत्र से इतना सारा स्नेह, उसकी कलभाषिणी, उसकी तोतली बोली और उसके सारे कार्यकलाप, मानो उसकी लीलाएं उस नारायण की, और इतना सारा प्रेम अजामिल का, तो सदैव पुकारता रहता था, हे नारायण, नारायण आ जाओ, नारायण आ जाओ, नारायण भोजन करो, नारायण ये पियो, नारायण ये खिलौने तुम्हारे लिए, नारायण आ जाओ, कहाँ है नारायण, नारायण वेर इज नारायण। जैसे माता पिता पुकारते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो अजामिल कोई अपवाद नहीं था। और ये एक विशेष उदाहरण था। तो हुआ, समय बीत रहा था और उसको पता नहीं चल रहा था, लेकिन समय तो बीत रहा था। और फिर उस दिन आ गए, यमदूत आए, उनका भी वर्णन सुने आप, हाँ सुने कि नहीं, कल रात को नींद आई कि नहीं आपको? लेकिन वैसे आप नारायण या विष्णु दूतों का भी दर्शन किए कला, कितने सुंदर, ये बात एडमिट की या उन यमदूतों ने, आप बड़े सुंदर हो, आप बड़े सुंदर तो हो। और सारे सर्वांग सुंदर का दर्शन करते हुए वर्णन भी कर रहे थे, आप आपके नेत्र ऐसे है, आप ऐसे पीतांबर वस्त्र पहने हो, ऐसे चतुर्भुज हो आप, ये सारे अस्त्र शस्त्र भी धारण किए हो आप, किंतु आपका व्यवहार ठीक नहीं है, ना जाने क्यों आप हमको रोक रहे हो, जो हम धर्मराज के दूत है, इसमें आप विघ्न क्यों डाल रहे हो? तब विष्णु दूतों ने उनकी मेघ गर्जना जैसी वाणी से, मेघ निर्हार दया गिरा, उन्होंने कहा, अगर आप सचमुच हो ही निदेशकारिणः धर्मराज के, आप कह तो रहे हो, लेकिन आपको साबित कराना होगा, प्रूव इट कि आप धर्मराज के दूत हो, प्रतिनिधित्व उनका कर रहे हो, भूत धर्मस्य न तत्वम, धर्म का तत्व हम सुनना चाहते हैं। आप सचमुच हो ही यमराज के, धर्मराज के प्रतिनिधि, तो आपका ये धर्म का तत्व, कहिए धर्मस्य लक्षणम, धर्म के लक्षण हम सुनना चाहते हैं आपसे। और आप जो दंडित कर रहे हो इस अजामिल को, या दंडित करने के उद्देश्य यहाँ पहुँचे हो, आपकी दंड देने की पद्धति क्या है, कैसे दंड देते हो और किसको दंड देते हो, और जो पापी है उन सभी को आप दंड देते हो कि उसमें से कुछ को शायद आप दंड नहीं देते होंगे, ऐसा भी कोई किसी को छूट भी होती है, ऐसे मुख्य मुख्य प्रश्न जब विष्णु दूतों ने पूछे हैं तो यमदूतः वचुहु, यमदूत तैयार है, दे आर रेडी। अब तो आई थिंक इसकी जरूरत नहीं, हम थोड़ा टच एंड गो, समझते हो, थोड़ा होगा। जब प्रातःकालीन भागवत कथा होती है तो एक एक श्लोक ये अजामिल का उपाख्यान 3 महीने सुनते हैं हम मंदिर में, जब भागवत कथा होती है एक श्लोक 1 घंटा कथा होती है। आपको अभी 3 पूरे अध्याय 3 घंटों में या 3 दिनों के कुछ घंटों में और ऊपर कुछ मिनटों में, तुमने कहा वेद प्रणहितो धर्मो, बहुत बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, वैसे जानकार है, ज्ञानी है ये, वैसे कुछ अज्ञान भी है उनका, कुछ कसूर भी हो रहा है उनसे, जब अजामिल को वो दंडित कर रहे हैं, अजामिल को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो ये दोनों पार्टी विष्णुदूत और यमदूत, नहीं नहीं इसको दंड मिलना ही चाहिए, यमदूत कहेंगे तो फिर विष्णुदूत समझाएंगे क्यों इनको दंडित नहीं करना चाहिए, तो दोनों के भाषण एक के बाद एक। पहले तो हुआ अजामिल सुनेंगे, बाद में हमको भी सुनने का अवसर प्राप्त ही हो रहा है, यह महत्वपूर्ण होगा प्रवचन है ही, यमदूतों का प्रवचन और फिर विष्णुदूतों का प्रवचन। इस प्रवचन को, इस संवाद को हम तक पहुंचाया जा रहा है, जिस संवाद से, जिस प्रवचनों से, इन दोनों के प्रवचनों से अजामिल लाभान्वित हुए, साधु संग मिल रहा है उनको, विष्णुदूतों का साधु संग और यमदूतों का भी ऐसे साधु संग ही है, तो इस संवाद को हम तक पहुंचाया जा रहा है, इसीलिए इसका समावेश हुआ है श्रीमद् भागवत में, ताकि हम भी इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, समझेंगे, लाभान्वित होंगे। और जैसे फिर अजामिल का कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा। फिर आपको पहले ही बताते हैं, हाँ, ये जो कथा ऐसे इस कथा प्रसंग के अंतर्गत यह संवाद भी है यमदूतों का, यमदूत और विष्णु दूतों का, और फिर यमराज का भी इस तीसरे अध्याय में, इस छठवें स्कंद के तीसरे अध्याय में। तो वह ये श्रवण का श्रुति फल जिसको कहते हैं, द्वितीय अध्याय के अंत में ही कहा है, य एवं परमं गुह्यम इतिहासम। इस गुह्य इतिहास को, ये गोपनीय इतिहास है, एक प्राचीन और गोपनीय इतिहास, जो अभी सुनेंगे, श्रणुया श्रद्धया युक्तो, जो श्रद्धा से इस प्रसंग को सुनेंगे। इस बात को शायद अंत में कहते तो शायद आप पहले बताते, आप अगर बताते थोड़े श्रद्धा से सुनते, अभी तो चिड़िया चुग गई खेत, अभी बता रहे आप, तो इसीलिए अंत में बताने के बजाय पहले ही बता रहे हैं इस कथा प्रसंग का श्रवण से क्या होगा। श्रद्धया युक्तो यश भक्तिया अनुकीर्तयेत। वैसे दो बातें कही है, एक तो इस कथा प्रसंग, इस उपाख्यान का, अजामिल उपाख्यान का श्रवण कैसा करे, श्रद्धा से श्रवण करे, एक बात, और दूसरी बात भक्तिया अनुकीर्तयेत, और भक्ति से इसको, इसका कीर्तन करे, मतलब औरों को सुनाए, जो घर वाले वगैरह नहीं पहुंचे यहाँ, वो बिजी चल रहे हैं, मरने के लिए समय नहीं तो पधारे नहीं, तो हुआ ऐसे कुछ अभागीय वर्षा के कारण डर गए और घर के छत के छत्र छाया में जो बैठे हैं, उनको भक्तिया अनुकीर्तयेत, श्रद्धा से सुनेंगे और फिर भक्ति से उसको सुनाएंगे, इसी को श्रवणम और फिर क्या कहते हैं, कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम जो करेंगे इस कथा का। न वै नरकम याति, वे नरक में नहीं जाएंगे, तो एक बैच तैयार होगी नरक में न जाने वाली बैच। न इक्षतः यम किंकरई, और यम के किंकर यमदूत तो आपकी ओर तिरछी नजर से भी नहीं देखेंगे, ये आपको दूर से नमस्कार करके चले जाएंगे। और विष्णु लोके महियते, और इस कथा का श्रवण और कीर्तन, श्रद्धा से श्रवण और भक्ति से कीर्तन करने वालों वाले पूजित होंगे, वैकुंठ लोक में आपकी पूजा होगी। गौर हरि बोल, ये फल है इस कथा श्रवण का, जो पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत भी आप कर रहे हो, पहले दिन ही आपने शुभारंभ किया इस मास का, इस कथा के श्रवण के साथ। तो वह तो मंगल होगा, सर्वानि भद्राणि पश्यन्तु। तव यमदूत उवाच, बोल रहे हैं, उनका वेद प्रणयितो तो धर्मः, वेद की वाणी ही है धर्म, और वेद वाणी के विधानों के विपरीत है अधर्म, ऐसी व्याख्या परिभाषा वे सुना रहे हैं। वेदो नारायण साक्षात, और वेद तो साक्षात नारायण है। वेद वेद भगवान के श्वास के साथ वेद उत्पन्न होते हैं, ध्वनित होते हैं, प्रकटित होते हैं। वेद अपौरुषेय है, अपौरुषेय मतलब संसार के किसी साधारण पुरुष के वचन या वाणी नहीं है, और वेद शाश्वत है। वेद शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, जैसे तो वह वेद नारायण साक्षात, तो वेद भी साक्षात है, आप साक्षात भगवान है, और वे शाश्वत है। ये न स्वधाम निभावा, तो नारायण कहो अपने धाम में विराजमान रहते हैं, और वही से ये सारे संसार के सृष्टि का नियंत्रण भी करते हैं, संचालन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कृष्ण कहे गीता में, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, मयाध्यक्ष हूँ। तो या यमदूत भी कह रहे हैं, रजसत्व तमो मयः गुणमयी माया, जिसको भगवान कहे, ये प्रकृति, ये माया जो संसार को नचाती है, तीन गुणमयी है, सत्व रज तम गुणमयी है, और उसी के उसी से फिर ये संसार के विभाजन भी होते हैं, वर्णाश्रम पद्धति, जो सत्वगुणी होते ब्राह्मण और तमगुणी होते हैं शूद्र, और बीच वाले क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों या दो, उसमें दो गुणों का मिश्रण से क्षत्रिय बनते हैं, थोड़ा सत्व गुण और काफ़ी सारी राजसिकता, तो क्षत्रिय हो गए। फिर वैश्य किंचित सत्विकता, कुछ राजसिकता और कुछ तमगुण भी प्रवेश कर लेता है, तो बन गए वैश्य। और कलौ शूद्र संभवः, कलयुग में शूद्र मिलेंगे, क्योंकि सभी अधिकतर तमोगुणी ही है। सतयुग में ब्राह्मणों का प्राधान्य होता है, क्योंकि सत्वगुण का प्राधान्य होता है सतयुग में। त्रेतायुग में क्षत्रियों का, द्वापर में वैश्यों का, और कलयुग में अधिकतर प्राधान्य, अधिक संख्या में कौन मिलेंगे? शूद्र मिलेंगे। इस प्रकार ये चार युग भी बनते हैं, अलग अलग गुणों के कारण। तो इस प्रकार यथा तथम, यथा तथा, इस प्रकार भगवान विभाजन करते हैं और सारी सृष्टि का नियंत्रण करने वाले भगवान ही है। इतना कहने पर आप किसको दंडित करते हो, क्या विधि है, आपको कैसे पता है कि किसने पाप किया नहीं किया, ऐसा ही प्रश्न था। विष्णु दूतों का तो यमदूत कह रहे, नहीं नहीं नहीं, हमारे पास काफी व्यवस्था है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी भी है और हमारे कई सारे साक्षी, साक्षियों की नियुक्ति हुई है इस संसार में और वो सारी इंफॉर्मेशन जानकारी पहुंचाते रहते हैं। यमराज के पास, उनके राजधानी में उनके पास सुपर कंप्यूटर्स भी है, हरे के नाम का एक अकाउंट खुला हुआ है वहाँ पर भी, और फीडिंग करते रहते हैं। सेक्रेटरी है, क्या नाम उनका, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त नाम के सचिव भी है। तो सारी इंफॉर्मेशन जो अहर्निश रात और दिन पहुंचती रहती है, उसको नोट करते रहते, सारा डेटाबेस बना हुआ है। तो कौन कौन है साक्षी, विटनेसेस कौन कौन है, किसी ने पाप किया तो कोई देखता भी तो है और कोई समाचार पहुंचाता भी तो है कि नहीं, तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा है, हा हा आप गिन लो और याद रखो, वैसे पाप करना नहीं तो फिर कोई चिंता नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपके जानकारी के लिए। वैसे आप तो सूर्य साक्षी है, अब अग्नि साक्षी है, खम आकाश साक्षी है, मरुदेवा वायुदेव साक्षी है। तो कहाँ छिपोगे, कहाँ छिप के पाप करोगे, जहां भी जाओगे वहां कोई ना कोई पीछा कर रहा है या वहीं पर है और लिस्ट आगे है, इन्हें समझना कि भी तो ओ सर। फिर दिन में सूर्य है तो रात्रि को साक्षी चंद्रमा है और पूरा दिन भी साक्षी है और पूरी रात भी एक साक्षी है और दिशा, द डायरेक्शंस, और कितनी दिशा है, 10 दिशाएं है, पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर और अग्नि ने रहते वायु ईशान्य ऊर्ध्व अधः, जो 10 दिशाएं हैं, जल है, पृथ्वी है, काल है, धर्म है, एते ही देहिश्च साक्षिणः। तो देही के, देही आत्मा जो देह में निवास करता है उसको देही कहा है, उसके सारे कृत्यों के ये सभी साक्षी है। हम थोड़ा देख लेते हैं, इधर कोई है या इधर कोई नहीं है, फिर हम समझते हैं दिस इज, हम अकेले ही है, कोई देखने वाला नहीं है, चलो। लेकिन अब आपको पता चला ये सब साक्षी है। आई विटनेसेस, आई विटनेस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एतैर् धर्मो विज्ञातः, तो इन्हीं की मदद से सारी जानकारी ज्ञान होता है। स्थानम दंड युज्यते, और ये सारी इंफॉर्मेशन जानकारी के का उपयोग होता है, और तभी निर्णय होता है कि किसको दंडित करना है या कौन दंड का पात्र है और किसको दंड नहीं देना है, और उस दंड की लघुता गुरुता निर्धारित होती है। उसके पाप लघु है, पाप गुरु है पाप। सर्वे कर्मानुरोधेन दंडमर्हन्ति कारिणः, अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडित किए जाते हैं। संभवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानगः, हे विष्णु दूतो, तो कोई पुण्य करते हैं कोई पाप करते हैं, गुण संगो अस्ति, क्योंकि सभी गुण के संग में है या गुणों से प्रभावित है। तीन गुणों से सभी प्रभावित है, या माया माया जिसको कहते हैं, माया तो त्रिगुणमयी माया है, त्रिगुणमयी त्रिगुणमय गुणमय गुण। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, भगवान ने कहा बताइए आपको, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विभाजन कैसे, गुण कर्म विभागशः, उनके गुणों के अनुसार। जन्म कर्म विभागशः नहीं कहा, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ तो ब्राह्मण हुआ, ऐसा नहीं, गुण कर्म विभागशः। तो वह सभी के सभी गुण से प्रभावित है। कर्मणा दैव नेत्रेण सद असद जन्म योनिषु, फिर अन्य स्थानों पर ये वचन है। तो कर्मणा दैव नेत्रेण, तो उस व्यक्ति के कर्म देखे जाते हैं, तो पाप कर्म पुण्य कर्म सत्व गुण रजगुण तमगुण किस गुण से प्रभावित होके उसने ये कृत्य किया वो कृत्य किया, तो फिर सद असद जन्म योनिषु, तो जो जो जन्म भी होता है किसको किस योनि में किस घराने में किस स्थान पर जन्म, इसका भी हिसाब के अनुसार के सारे पूर्व के जो कृत्य है उसके। ऑलराइट, देहवान ही न अकर्मकृत, तो देहवान व्यक्ति कार्य किए बिना क्षण भर के लिए भी रुक नहीं सकता, सभी सभी व्यस्त रहते हैं, सदैव जन्म से मृत्यु तक, फिर वो कार्य कायिक होता है, कायिक वाचिक मानसिक क्रियाएं तीन प्रकार की होती, शरीर से किया हुआ कार्य, वाचा से किया हुआ कार्य, मन से भी किया हुआ कार्य, तो या तो ये तीनों के तीनों, नहीं तो दो, नहीं तो एक। रात्रि लेटे हैं तो स्वप्न देखते हैं तो माइंड इज एक्टिव, और शरीर के अंतर्गत तो दिल की धड़कन तो चलती ही रहती है, और सब येन यावान् धर्म यथा धर्मो अधर्मो धर्म वा इह समाहिता स एव तत् फलं भुंक्ते। तो हर व्यक्ति के अपने अपने कार्य कलापों के अनुसार, या उसका उसने धर्म का कृत्य किया या अधर्म किया, तत्फलम वैसे ही फल भोगेंगे वे, या तो वे इस जन्म ही में भोगेंगे या फिर अगले जन्मों में भी भोग सकते हैं। अगला जन्म है तो हुआ तो ये जो देही है इसके संबंध में कुछ विशेष बात कह रहे हैं यमदूत। एक तो देही बद्ध जीव इस संसार में जो देह में फंसा हुआ है, अज्ञानी होता है, और अजित षड वर्ग षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है और न इच्छा न भी, और कभी कभी इच्छा नहीं होते हुए भी बलपूर्वक उससे पाप करवाया ही जाता है, कुछ कार्य करवाया जाता है, और फिर वो अपने किए हुए कार्यों से ही बंधन में आ जाता है। ओके, यहाँ तक। फिर इसको उदाहरण के साथ इसको समझा रहे हैं। जैसे कोशकार रहा, एक रेशमी कीड़ा होता है सिल्क वर्म, आपने नाम सुना होगा सिल्क वर्म, तो रेशमी कीड़े की उसकी जीवन की शैली कहो या उसके मुख से कुछ लार लार निकलती रहती है, उसे बनता है कुछ धागे दोरे बनते हैं, रेशमी कीड़ा होता है ना रेशम, रेशम, तो उसी से अपने शरीर को वो लपेटता रहता है, जब लार निकलती है ऐसा लपेट लिया ऐसा ऐसा, फिर उससे क्या बन गया, उसे बन जाता है कोष बन जाता है, और फिर ऐसा समय आ जाता है कि वो पूरा स्वयं को पैक बंद कर देता है, और इसी के साथ फिर अंततः गत्वा उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसने किए हुए कार्यकलाप, उसका मुख्य कार्य तो ये रेशमी धागे उत्पन्न करना है जो, और उन धागे दोरे ओतम प्रोतम, तो उसे स्वयं को ढक लेता है और फिर उसके अंदर समाधि समाधिस्थ हो गया, फिनिश्ड, सांस भी नहीं ले सकता। और तो यमदूत कह रहे थे इस संसार के जो बद्ध जीव है उनकी भी गति ऐसी ही है, उनकी भी स्थिति ऐसी ही है, वे जो मरते रहते हैं उसके कारण वे स्वयं ही है, ये किया वो किया वो किया वो किया, फिर उसका उसी कारण मरण हुआ, फिर जन्म हुआ, और फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो अब अजामिल मैं कहते हैं कि एक समय तो ये बड़ा चरित्रवान था, ऐसी इंफॉर्मेशन भी हमें मिली है, सूर्य चंद्रमा रात दिन दिशा इत्यादि इत्यादि, जल पृथ्वी, इन्होंने हमारे पास कुछ अच्छे रिपोर्ट्स भी भेजे एक समय आया करते थे, अयम यही तो श्रुत संपन्न ये बड़ा शास्त्रज्ञ था, एक समय तो बड़ा शास्त्रों का अध्ययन किया करता था ये अजामिल अयम, उसकी और उंगली का यही यही अजामिल। श्रुत संपन्न शीलव्रत गुणालय, बड़ा गुणों की खान था वो, बड़ा मृदु स्वभाव का था, संयमी था, मंत्रविद, मंत्रों का उच्चारण वगैरह इतना बढ़िया करता था वो, मंत्र तंत्र विशारद पवित्र था उसका जीवन। और वो सेवा करता, शुश्रूषा करता, किनकी किनकी सेवा करता, मदद करता, सेवा करता, गुरु की अग्नि की यज्ञ करता था, गुरु उनकी आराधना और चरण शरणागति। और अतिथियों के सेवा, एक समय तो उसने बाहर बोर्ड लगाया था अपने घर के सामने, अतिथि देवो भव, लेकिन बाद में कुत्तों से सावधान, बोर्ड चेंज किया, गनमैन रखे, क्या क्या। तो अतिथियों की सेवा करता, वृद्धों की सेवा करता, ये बड़ा सेवाभावी था। सुहृद, सभी जीवों का, जीवों के साथ मैत्री का व्यवहार। और मितवाक, मित भूख भी, सारे वैष्णव के गुण थे। तोल के वो बोलता, बक बक बड़बड़ नहीं करता, जितना आवश्यक है उतना ही बोलता, सोच के बोलता, बोलने के बाद नहीं सोचता, बोल के सोच के बोलता। और अनसूय कहा, किसी के प्रति इसकी ईर्ष्या द्वेष, किसी में कोई दोष दृष्टि, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बड़ा सज्जन, सदाचारी, चरित्रवान था ये अजामिल। लेकिन फिर एकदा, एक समय की बात है, उन दिनों में वो जाया करता था फल पुष्प अपने उसके इष्ट देव विग्रह, उनके उनके पिताश्री के घर, घर घर एक मंदिर है, घर उसने अपना मंदिर बनाया था, बाद में होम थिएटर बनाया, बाद में होम थिएटर बनाया, और फिर बंबई के सारे नट नटियों को अपने घर में लाके उसको देखने लगा। लेकिन एक समय तो दूरदर्शन चलता था उसका, दूरदर्शन मतलब भगवान का दर्शन करता था, जब भगवान दूर है अपने जगत में, अपने धाम में, उस भगवान के विग्रह की स्थापना अपने घर में करके हम विग्रह का दर्शन करेंगे, तो भगवान का दर्शन हुआ दूर दर्शन, दूर के भगवान का, भगवान को पास में लाके उनका दर्शन करो। तो एक समय ऐसा दूरदर्शन करता था, तो अपने विग्रह के लिए एक दिन जब वो गया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम इत्यादि सामग्री लाने के उद्देश्य से, और उसने सब इसको इकट्ठा भी किया सामग्री और लौट रहा था, तब उसने एक दृश्य देखा, आप नहीं देखना चाहते हो इसलिए आंखें बंद कर रहे हैं। ददर्श कामिनम कश्चित शूद्रम, किसी नीच शूद्र को, नीच जाति के व्यक्ति को, इसको बाहर के लोग शायद जेंटलमैन कहते थे, तथा कथित जेंटलमैन, लेकिन उसका थिंकिंग सारा नीच था, हाई लिविंग और नो थिंकिंग, लो थिंकिंग वाला एक कामी शूद्र, संसार का अधिकतर लोग शूद्र ही है, ये सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस उनके कार्यकलाप ये तमगुण के अंतर्गत ही है, तो ये सब कामी है, क्रोधी है, लोभी है। और आजकल के सिनेमा का टॉपिक तो दो ही टॉपिक होते हैं, एक काम और दूसरा क्रोध, सेक्स एंड वॉयलेंस, ये दो थीमें चलती रहती है। तो ये नीच वृत्ति, नीच विचार, ये लोग नीच है, नीच कहेगा, लेकिन ऐसे लोगों को संसार में इनको हीरोज, ये हमारे कौन हो गए, ये हीरोज हो गए, ये हमारे नायक हो गए, उसमें भी नायक और खलनायक चलता है, लेकिन दोनों भी खलनायक ही होते हैं, दोनों भी नीच ही होते हैं। हरी हरी। तो उसके साथ थी एक स्त्री, थी दो थे, एक शूद्र और एक शूद्रानी, शूद्रानी कहना होगा, और एक दूसरों से गले लगा रहे थे, सब चल रहा था, उनका नंगा नाच चल रहा था, आई लव यू एंड यू लव मी, सब चल रहा था, और बेशरम पब्लिक प्लेस में ही, जैसे कुत्ते और बिल्लियों को कोई शर्म नहीं होती, उनका चलता रहता है स्क्वायर में ही, चौक में ही, चौराहे पर उनका सब धंधा चलता रहता है। तो मनुष्य भी वैसा ही अपना लाइफस्टाइल, तो इसीलिए कैट्स एंड डॉग्स, प्रभुपाद कैट्स एंड डॉग्स, आजकल के लोग कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्ली जैसा भाव। तो पित्वा उन्होंने कुछ शराबी पिए थे, पता नहीं देसी दारू पिए थे कि बैग पाइपर, हमको कैसे पता बैग पाइपर वगैरह। माद घूर्णित नेत्रया, और इतने शराबी तो उनकी आंखें घूम रही थी, दे आर रोलिंग, बड़े शराबी और मत वाले हुए थे वे। क्रीडन्तम् अनुगायन्तम् हसन्तम् यान्तिके तो वो खेल रहे थे, एक दौड़ता है आगे फिर वो पीछे से वो दौड़ती है, कभी वह दौड़ती है तो पीछे से वह दौड़ता है, वो गाता है फिर वो अनुगायंती मेरा तन डोले रे मेरा मन डोले रे, बारी बारी चलता है ना, दे टेक टर्न्स। बस और कुछ है ही नहीं संसार में, सबसे सर्वोत्तम अगर कुछ है तो स्त्री है, या पुरुष के लिए स्त्री है और स्त्री के लिए पुरुष है, बस फिनिश। इसके ऊपर कुछ है ही नहीं है, इन दोनों का ही जगत और संसार, और एक दूसरों का इतना गुणगान करते और गाते रहते हैं, तो ये भी वैसे ही कर रहे थे। तो दृष्ट्वा ताम काम लिप्तेन, तो इस अजामिल ने वो दृश्य देखा और देख रहा था कुछ समय से, तो वह उसका पतन हुआ, उसके मन में उसका पतन हुआ और वो स्वयं ही उसमें काम वासना, तीव्र काम वासना जगी और उसी ने उसको मोहित किया। तो यमदूत कहते हैं कि उसने प्रयास तो किया, ए नहीं नहीं नहीं, इस माया, इसको नहीं देखना चाहिए, आंखें बंद करो या वहां से चले जाओ, इंद्रियानि इंद्रियार्थ्यभ्यस, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से दूर खींचना चाहिए। जैसे कुर्मो अंगानी व सर्वशः, कछुआ होता है, कछुआ भगवान में, भगवान ने गीता में कछुए का उदाहरण दिया, कछुआ कभी खतरे में होता है तो क्या करता है, अपने उसके जो अंग है हाथ पैर को सिकुड़ लेता है, क्योंकि उसकी जो पीठ होती है सारा वो कठिन होती है, तो उसके सहारे से फिर उसको वो ढाल बना देता है, मानो ढाल जैसा दिखता भी वैसे उसके शील्ड, यहाँ से कोई खतरा है तो ऐसे भगवान ने सलाह दी है। तो उसने ये सब सुना था, यथाश्रुतम वो साधना कर रहा था, उसको बताया था माया किसको कहते हैं और इंद्रियों पर कैसे संयम करना चाहिए, तो उस शिक्षा के अनुसार उसने उसका उस पर अमल करने का प्रयास किया, किंतु फेल हुआ, क्योंकि काम वासना इतनी तीव्र तो वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। न शशाक, तो असमर्थ रहा और अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाया। मदन वेपितम, तो मदन जो मदन होता काम, काम देवता को मदन भी कहते हैं, मदन कई नाम है उनके, काम काम देव, तो मदन, इस मदन को भगवान मोहित करते, इसीलिए भगवान का एक नाम मदन मोहन, जो मदन को भी मोहित करते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम कंदर्प, उस कामदेव का दूसरा नाम कंदर्प भी है, अनंग भी है, कई सारे नाम है उस कामदेव के। तो काम आया था जब शिव जी के सामने और कुछ हमला करना चाह रहा था, तो इतने में शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल के उसको भस्म किया। तो तब से वो अनंग बन गया, बिना अंग वाला, ऐसा अस्तित्व था लेकिन शिव जी ने उसको एक प्रकार से उसको भस्म किया अपने अग्नि आँखों से उत्पन्न अग्नि से। तो वह मदन मोहन, तो हम मदन मोहन की आराधना करते हैं ताकि वे मदन को मोहित करे, आकृष्ट करे, हटा दे हमारे मार्ग से, ताकि हमारा भक्ति का मार्ग निर्विघ्न हो। तो हुआ, फिर हो गया विचेतन, उसकी चेतना नष्ट हो गई और उसी शुद्रानी का, दासी का, वेशा का ध्यान करने लगा और फिर उसने उसको प्राप्त भी कर लिया। वो नेक्स्ट, वो दूसरा जेंटलमैन चला गया तो वो बीच में आ गया और उसने अपने फंदे में फंसाया उसको। तो हुआ, इसके पालन पोषण के लिए फिर वो कई प्रकार से, कई ढंग से धन इकट्ठा करने लगा। बभाराश्य कुटुंबिन्यां कुटुंबं मंदधीरयम्, अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए उसने यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, आपको पता नहीं है। तो जब से, जब तक जीते हो कैसे जियो, चैन से जियो, यावत जीवे सुखम जीवे, लेकिन धन नहीं है, ऋणम कृत्वा मतलब क्या करो, ऋण निकालो, कार लोन लो, हाउस लोन लो, और कौन सा ओवरसीज एजुकेशन लोन लो, मैरिज लोन, लाइक दैट, वही ऋणम कृत्वा। चारवाक के, ये चारवाक का सिद्धांत है, चारवाक ने, चारवाक नाम के मुनि, ऐसा सिद्धांत, बड़ा विपरीत सिद्धांत है उनका। उन्होंने कहा कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी पियो भाइयों, कम से कम शराब पियो तो नहीं कहा उस मुनि ने, घी पीने की बात करा। तो हुआ, ओके, तो इसने सारे शास्त्रों का उल्लंघन किया है ये स्वैराचारी, मतलब कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है बहुत समय से। आर्य गर्हितः, सारे जो साधु पुरुष है, महात्मा, इन सभी के द्वारा ये निंदित है। बाहर के लोग तो निंदा करे तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे लोग, साधु लोग, सभ्य लोग, महात्मा गण, अगर वे निंदा करे वे तो बड़ी पतित अवस्था। ततेनम, इसीलिए हम क्या दंड पाने हैं, इसको ले जाएंगे दंड पाणी यमराज के पास ले जाएंगे, नेश्यामः और यत्र दंडेन शुद्ध्यति। इसको बात तो ये बात से मानने वाला भूत नहीं है, इसको क्या चाहिए, लाश चाहिए, लाश। तो हम ले जा रहे हैं और देखते हैं, हमारे पास 28 अलग अलग प्रकार के नरक है, यातना है, ये किस यातना के लिए फिट है, ये भूत कितनी लात इसको चाहिए, ये निर्धारित होगा। पहले इसको ले जाते हैं और दंडेन शुद्ध्यति, फिर दंड से शुद्ध होगा, फिर सीधा हो सकता है, मग ताड़ावर्ती हो सकता है, ताड़ावर्ती। तो पहले इसको ले जाते हैं, तो ये हुआ विष्णु दूतों का ना, यम दूतों का प्रवचन। और अब विष्णु दूतों की बारी है। विष्णु दूतों को भी सुनेंगे, यमदूत भी सुनेंगे, और कौन सुन रहे है, अजामिल सुन रहे है, और उनकी स्थिति बड़ी आधे अंदर आधे बाहर, अब डामाडोल स्थिति है। कमल दल जल जीवन टलमल, तो टलमल स्थिति में बड़े हेल्पलेस, हेल्प 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 हेल्प, नॉट इन कंफर्ट जोन एनी मोर। कंफर्ट जोन होता है कोई सुख का क्षेत्र, उसके बाहर खींचे हैं, और उस स्थिति में ये सुन रहा है। अब यहाँ से द्वितीय अध्याय भी शुरू हो रहा है, छठवें स्कंद का ये द्वितीय अध्याय है, और इस पूरे अध्याय को अब थोड़ा समय हमारे पास बचा है। अहो कष्टम, ओह नहीं 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 नहीं, आप इसको जो दंड दे रहे हो, नहीं, ये दंड का पात्र नहीं है। ये आश्चर्य की बात, ये खेद की बात है। धर्मराज के सभा में न जाने कैसे अधर्म ने प्रवेश किया, ऐसा यमदूत विष्णुदूत कह रहे, विष्णुदूत कह रहे, ये अपराधी नहीं है, और पाप से कब का मुक्त हो चुका है ये, जब से वो कह रहा है नारायण 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 नारायण, आ जाओ बचाओ। तो दिन में कितनी बार नारायण नारायण, हर दो एक दो मिनट के बाद नारायण कहा है, नारायण कहा गया, नारायण आ जाओ, नारायण बैठो, नारायण भोजन करो, नारायण सो जाओ, नारायण 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 नारायण। तो माला पर तो नहीं, लेकिन इसका चल रहा था नारायण 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 नारायण। तो वह ये तो आप अन्याय कर रहे हो, प्रजा के जो पिता है या यमराज है, महाभागवत है द्वादश भागवतों में से, तो वह वे शासक है या समदर्शी है, परोपकारी है, ये सब होते हुए भी ये विषमता, ये जो निर्णय लिया गया इसको दंडित करने का, ये सही नहीं रहा। तो कम यान्ति शरणम प्रजा, तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी जिनके सहारे जीना होता है। उन्होंने ठुकराया, उन्होंने ही दंड देना प्रारंभ किया निरपराध होते हुए भी, तो फिर कहाँ जाएगी प्रजा। यद यदाचरति, तो महाजनों ने जो श्रेष्ठ लोगों ने ऐसा कार्य करना शुरू किया, तो फिर इतरह जो दूसरे लोग हैं वे कैसे निर्णय लेंगे। सयत प्रमाणम क्रूते, ये गीता का भी वचन है, भगवान ने गीता में भी कहे हैं। बड़े लोग जैसे कार्य करते हैं सोचते हैं, तो छोटे लोग उनके अनुयायी वैसा ही कार्य करते हैं, सीखते उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अयम ही कृत निर्वेशो, अरे इसने तो कोटि कोटि जन्म का पाप को नष्ट कर दिया है। या कोटि कोटि या पाप के राशि को इन्होंने राख बनाया है। जब ये हरे कृष्णा 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 राम हरे राम व्याजहार नाम स्वस्ति अयनम हरे है, हरेर नाम इसका नाम हरि का नाम, लेकिन नाम हरि का लेना चाहिए। और इसने हरि का नाम लिया है, तो इसने तो सारे इसका प्रायश्चित पूरा हो गया। पहले कहे थे यह मधु, इसने प्रायश्चित भी नहीं किया, पाप तो किया लेकिन प्रायश्चित नहीं किया। अगर प्रायश्चित करता तो शायद हम इसको नहीं ले जाते, प्रायश्चित नहीं किया, लेकिन विष्णु दूत करा इसने प्रायश्चित किया है, भगवान के नाम का उच्चारण किया, तो ये सर्वोत्तम यही प्रायश्चित है। अलग से जो भक्ति कर रहा है, भक्ति योगी है, जप योगी है, उसने सारे प्रायश्चित कर लिए। भक्ति इस प्रकार कंप्लीट है, पूर्ण है, किसी प्रायश्चित पर निर्भर नहीं रहती। ये साध्य भी है और साधन भी है और साध्य भी है। यदा नारायणाय इति जगात चतुरक्षरम, ये चार अक्षर वाला भगवान का नाम, जब वो कहता नारायण अय, मतलब हे नारायण आ जाओ, उसने कितनी बार कहा नारायण आ जाओ, नारायण आ जाओ, नारायण आ जाओ, नारायण आ जाओ, ऐसा कब से कह रहा है। और फिर आप लोग जब इस कक्ष में, इसके बेडरूम में प्रवेश किए, तब उसने जो नारायण कहा, बस उच्चारण ही पर्याप्त है, ऐसा है। बड़ा मुझे कोई कोई और कोई बचाने वाला नहीं है, कोई रखवाला नहीं है। नारायण नारायण आ जाओ नारायण। तो उसने सारे प्रायश्चित किए हैं, और जो भगवान का नाम लेता है, पहले कि उसने चोरी की होगी या पहले का शराबी था या ब्रह्म हत्या किया होगा और भी कई सारे पाप किए होंगे, उसका लिस्ट दी हुई है। तो उन सारे पापों से नाम का उच्चारण करता मुक्त हो जाता है। नाम व्याहरणम सुनिष्कृतम, तो नाम नाम का उच्चारण करना ही प्रायश्चित है। फिर सर्वेषाम, कई सारे पाप, कोई भी नाम हो, दिस पाप दैट पाप दैट पाप, ये तो गुरु पाप है। तो गुरु है या लघु है, सारे पाप। ये हरि नाम, ये जो प्रायश्चित है, उसी से वो मुक्त हो जाता है। विष्णोर्यता तद विषया मति ही, तो और वे ये भी कह रहे कि जब व्यक्ति भगवान का नाम लेता है और भगवान सुनते हैं तो वो तो भगवान कहे कोई मेरा व्यक्ति, ये तो मेरा व्यक्ति है, इट्स माय पर्सन। मदीयता, मदीय मेरा व्यक्ति, मेरा भक्त, मेरा कुछ अपनापन, भगवान का अपनापन आ जाता है उस नाम जप करता करता वाले में। जैसे हे गोविंद हे कृष्ण, किसने कहा? द्रौपदी ने कहा। तो भगवान कहते कि उसने जो हे कृष्ण और हे गोविंद जिस जैसे कहा, उसका कहने का जो भाव था, बस उसने घर कर लिया मेरे मन में, और मैं उस कृष्णा का, द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा है, कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कृष्ण कृष्ण द्रौपदी, तो उसका मैं ऋणी बन चुका हूँ। मैंने कुछ उस समय साड़ी का सप्लाई तो कर ही दिया, लेकिन मैं तो उस ऋण से मुक्त नहीं हुआ। तो नारायण इसने कहा, तो और जो व्रत इत्यादि दान धर्म तप ब्रह्मचर्य, इनसे शुद्धि उतनी नहीं होती जितनी प्रभु नाम के उच्चारण से, हरिर नाम पदई यथा उत्तम श्लोक गुणोप लंभकम। भगवान का नाम तो हुआ, और नाम सांकेत्यम कोई संकेत रूप में भी कोई नाम को कभी कोई कहता है या कोई परिहास करते हुए या कोई कई प्रकार तो भी वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदुहु। इसका नामाभास, ये जो अजामिल ने नाम लिया था, नारायण का नाम ले रहा था, तो नामाभास की अवस्था में लिया, उसको नामाभास कहते हैं। तो जो भगवान का नाम लेने वाले होते हैं उसमें तीन सोपान विभाजन किए गए हैं। ये नाम जप का भी शास्त्र है, हरि नाम चिंतामणि नामक ग्रंथ में भी भक्ति विनोद ठाकुर और अभी पद्म पुराण इत्यादि में समझाया है। पाप के साथ किया हुआ जप, पाप भी कर रहा है जब भी कर रहा है, पाप भी कर रहा है जब भी कर रहा है, और फिर एक अवस्था आती है थोड़ा पाप घट गया, पाप कम हुआ, फिर नाम का आभास होने, नाम का आभास। पहले तो रात्रि का समय था, फिर ब्रह्म मुहूर्त, उषा काल डॉन, अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन उषा काल कुछ प्रकाश, तो आभास सूर्य का आभास, सूर्य अभी कुछ दूर नहीं है, यही कहीं होना चाहिए, अभी उदित होने वाला है, उदित नहीं हुआ, उगा नहीं अभी तक, लेकिन अब वो समय कुछ दूर नहीं है, उसको आभास, तो नामाभास, क्लियरिंग स्टेज, कुछ अनर्थों से मुक्त हो रहा है, पापाची वासना नको दाऊ डोड़ा, पाप की वासना कुछ कम हो रही है, और फिर अंततो गत्वा शुद्ध नाम का जप। तो इसने जो नारायण नारायण जो कहता रहा, और फाइनली जब री इन एडवांस तो यमदूत को देखा, और उस समय जो उसने उच्चारण किया था वो नामाभास की स्थिति में, अवस्था में उसने जब किया था, तो यह विष्णुदूत कह रहे हैं, कोई परिहास कोई संकेत के रूप में, कोई अवहेलना करते हुए कोई उच्चारण करता है तो भी उससे वो लाभान्वित होता है या उससे वो मुक्त होता है, भक्त नहीं होता लेकिन मुक्त तो होता है, तो लाभ होता है। हरे कृष्ण हरे राम नाम का एक फिल्म आया था, तो दम मरो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, तब तो वही समय 40 वर्ष पूर्व का, ये जिसने बनाया वो नहीं रहा अभी। तो हम जब बंबई में प्रचार के लिए जाते थे तो हम लोगों को, हरे कृष्ण भक्तों को, जब लोग देखते कि कोई हरे कृष्ण वाला यहाँ से जा रहा है तो हमको देखते ही फिर अपने घर में जाते थे और फिर वो ग्रामोफोन का his or her master's voice, पहले ग्रामोफोन क्या कहते उसको चलाते थे, बड़ा ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था, उसको जाके चलाते और उसका वॉल्यूम बढ़ाते। तो कुछ परिहास या हमको खिजाने के लिए हमको हरे कृष्ण, ये यही तो है, हरे कृष्ण हरे राम धम मारो धम। उसमें विदेश के हरे कृष्ण भक्त, तो हरे कृष्ण आंदोलन में विदेश के भक्त भी तो शायद समझे नहीं थे, हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त वो तो चाय भी नहीं पीते तो दम तो दूर रहा, अब मारना। तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग तो, लेकिन तो अभी हरे कृष्ण उस गीत में हरे कृष्ण हरे राम तो था, तो उससे भी लाभ, परिहास के रूप में वे उसको चलाते लेकिन उससे भी लाभान्वित होते। यह पूरा हरे राम राम भी नहीं कहा, हराम कहा, तो भगवान किसको सुनते हैं? राम पाठ को सुनते हैं, ह को नहीं सुनते। हमारे एक महाराज बता रहे थे जापान में टोकियो में ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते तो वहाँ कई सारे मुसलमान भी एज ए टूरिस्ट या कोई लोकल भी हो सकते हैं जो वहाँ रहा करते हैं, तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर ग्रंथ का विक्रेता वो हरे कृष्ण भक्त जानता है कि व्यक्ति मुस्लिम दाढ़ी है या कुछ है उसके वेशभूषा से, ये ग्रंथ लेने वाला नहीं है तो भी उसका पीछा करते रहते हो, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते जब तक हराम हराम खोर जाओ, तो फिर थैंक यू हम इसी की प्रतीक्षा में थे, हराम तुमने कहा तो किताब नहीं लिया तो कम से कम हराम तो कहो, तो राम तो कहो। तो उससे भी लाभ है, भगवान ऐसे दयालु है। चांद काजी के पास कोई चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी गए, चांद काजी तो कहते हैं सभी लोग हरी बोल हरी बोल हरी बोल कह रहे, काजी साहब आप हरी बोल क्यों नहीं कहते हो, आप भी कहिए ना। उसने कहे तुम्हारा हरी बोल को कल कहूंगा मैं। कल क्या, आपने अभी तो कहा हरी बोल, तो भक्त इतने खुश हो गए हरी बोल करके वो नाचने लगे कि काजी साहब ने क्या कहा, हरी बोल कहा, आज ही कहा, कल आज ही तो आपने कहा। तो ये सांकेत, ये परिहास, ये अवहेलना करते हुए भी कोई, तो उससे भी वो लाभान्वित होता है। ऐसे पैसे भगवान दयालु है, या ऐसा नाम भगवान का नाम दयालु है, ज्ञानाद अज्ञानात। तो विष्णुदूत उदाहरण दे रहे हैं कोई अग्नि को स्पर्श करता है उसको ज्ञान हो या नहीं हो यह अग्नि जलाती है या ज्ञान है नहीं है तो क्या करेगी? कोई छोटा बालक है अज्ञानी है या कोई बुजुर्ग है तो अग्नि तो जला ही देगी। तो ईंधन को जैसे या आग जलाती है तो हुआ तो यमदूतों ने भी ये भाषण ये प्रवचन ये अपने विष्णुदूतों ने प्रस्तुत किए हुए विचार उनको वे सुने। धर्मम भागवतम तो भागवत धर्म का ये प्रवचन विष्णुदूतों से यमदूतों ने जब सुना तो हुआ उन्होंने अजामिल को जो यमपाश से बांध दिया था आगे बढ़े गांठ छोड़ ली और यमराज के पास वे लौट गए। अजामिल मुक्त हो गया लेकिन भक्त नहीं बना है। उसने जो जप किया था ये नामाभास की अवस्था में जप किया था। भगवत धाम लौटने के लिए भक्त होके फिर भगवत धाम लौटने के लिए और एक अवस्था है शुद्ध नाम जप अपराध रहित नाम जप। तो लेकिन जैसे ही मुक्त हुआ और निर्भय हुआ और अभी वहाँ विष्णु दूत ही बचे थे वह वंदे शिरसा विष्णुः किंकरान् दर्शनोत्सवः तो उसने विष्णु दूतों को प्रणाम किया झुक के प्रणाम किया है और उनका दर्शन एक उत्सव था नेत्रोत्सव उसके लिए अपलक नेत्रों से उनको देखता ही रहा और कुछ बोलना चाहता था लेकिन इतने में वे विष्णुदूत वहाँ से अंतर्धान हुए। और अब अजामिल ये दो संवाद दोनों के संवाद यमदूत और विष्णुदूतों के संवाद को सुना था उस पर चिंतन करने लगा मनन करने लगा। ये आवश्यक होता है वैसे कथा का श्रवण करना एक बात वो तो प्रारंभ हुआ लेकिन कथा श्रवण के उपरांत उस कथा का स्मरण कथा का चिंतन कथा का मनन होना अनिवार्य है। ताकि हृदयंगम हो उसको केवल स्टोर नहीं करना है केवल अक्यूमुलेशन नहीं असिमिलेशन कहते हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो कुछ परिवर्तन हो हमारे हमारे जीवन में हमारे चेतना में हमारे जीवन शैली में। तो पश्चाताप करने लगा उसने जो जो जाने अनजाने सारे पाप किए थे अहो मे परमं कष्टम मैं कितने लोगों को और एन विप्लाविता विप्लावितं ब्रह्म कशल्याम जायता आत्मना। अपने धर्म को डुबा दिया, खो दिया, धर्म का पालन नहीं किया, धर्मों के नियमों का उल्लंघन किया मैंने, और वो विषा के चक्कर में फंसा मैं, और धिक्कार धिक्कार है मेरा ये जीवन। मेरे घराने को, कुल को मैंने कलंक लगाया, और मेरी जो धर्म पत्नी, वो विवाहित था पहले, वॉज मैरिड मैन, लेकिन उस बाला उस अपने धर्म पत्नी को मैंने त्यागा, और इस कुलटा ये वेशा के संगति में मैं फंसा। मेरे माता पिता वृद्ध थे, न अन्य बंधु और उनका और कोई सहायता करने वाला नहीं था, उनकी मैंने सेवा नहीं की, और मेरे माता पिता वैसे तपस्वी थे, सदाचारी थे, उनकी मैंने सेवा नहीं की, और मैं कितना कृतघ्न हूँ, नीच हूँ मैं। वो कौन थे अभी सोच रहा था, जो मैंने दृश्य देखा कुछ समय पहले, वो क्या स्वप्न था कि यह सचमुच ये सारी घटनाएं घटी मेरे साथ? वॉज दैट अ ड्रीम, और मेरी कोई कल्पना थी कि सचमुच ये सारी घटनाएं घटी? वो कहाँ गए वे पाश पाण यहा, जिनके हाथ में वो पाश थे, डोरिया थी, मुझे खींच भी रहे थे, लेकिन बीच में मुझे मुक्त करके छोड़ के वे कहाँ गए? और कहाँ गए वे चारु दर्शन, जिनका दर्शन विशेष था, वो चतुर्भुज पीतांबर वस्त्रधारी किरीट कुंडल पहने हुए वे विष्णुदूत कहा गए? तो हुआ न जाने कैसे वो अंतिम क्षणों में म्रियमाणस्य मेरे मुख से वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा वक्तुम इह अर्हति, मेरे मुख से मेरे जिह्वा ने नारायण का नाम कहा। न जाने कौन सा पुण्य मैंने पहले किया था, उस व्यक्ति ने तो नारायण का नाम नहीं कहा, भोला भी नहीं कहा, उसने तो कोका कोला ही कहा, है ना। एक व्यक्ति मरनासन्न था, तो परिवार के सदस्य बैठे सब इकट्ठे हो गए, एक दो सास ही बची थी, तो पिताश्री से कह रहे थे बोलो बोलो, भोला कहो भोला कहो, पिताश्री भोला कहो, लेकिन उसने भोला नहीं कहा, कोका कोला ही कहा, और उसी के साथ अंतिम सांस। तो फिर कहा गया कोका कोला लोक गया होगा। बेटे भी ऐसे, उन्होंने सोचा कि हमारे पिता की लास्ट विल तो कोका कोला थी, तो वे हरिद्वार गए, और गंगा के तट पर कोका कोला की बोतलें बांट रहे थे। गंगा तेरा पानी अमृत वहां बह रहा था, लेकिन उसके बजाय नदी के किनारे पर वो कोका कोले की बोतलें बड़ी बड़ी लॉरी भर के वहां खड़े किए थे। वैसे हमारे एक भक्त गए और पूछे तो वो सब बताए ऐसे ऐसी हकीकत हमारे पिताश्री कोका कोला अंत में कह के आगे बढ़े। तो हमने सोचा कि उनके विल का कुछ एग्जीक्यूशन अमल होना चाहिए, तो हम कोका कोला बांट रहे हैं। वो बाप जैसे बेटे भी निकले कोका कोला तो हुआ। लेकिन ये अजामिल कह रहा कि ना जाने मैंने कैसे नारायण का नाम, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो कुछ पुण्य का फल होगा ये। मैं कितना वैसे निर्लज पापी, लेकिन नारायण का मंगलमय नाम का उच्चारण मैंने किया। मुझे उसे नरक में, नरक ही मेरा गंतव्य स्थान था, लेकिन नारायण कहा तो बड़ा परिवर्तन हो गया। इस नारायण के नाम ने, नारायण ने मुझे बचाया। तो उसने अभी संकल्प किया, फिर आज से फ्रॉम टुडे मैं एक नया व्यक्ति बनूंगा। सर्वभूत सुरित, तो सब जीवों का, जीवों के साथ मैत्री का व्यवहार करूंगा, शांत रहूंगा, संयम रखूंगा, करुणा की दृष्टि रखूंगा सभी की ओर। परासे मैं धासे मनो भगवती शुद्धम तद कीर्तनादि भी, आसे शुद्ध शुद्ध भगवान के नाम का उच्चारण के लिए मेरा प्रयास होगा। सारे नियमों का पालन करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा। पहले तो जैसे बना था क्रीड़ा मृग, वो जो वेशा थी मुझे नचा रही थी, जैसे क्या मदारी, मदारी ऐसा कहते हैं, मदारी वो डिम 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 बजाते हैं, बंदर को घुमाते हैं, कभी भालू को भी लेके आते हैं, और तो भालू ऐसा जंपिंग अप एंड डाउन करता है, कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसे भी वो मदारी कहता वैसा है, वो क्रीड़ा मृग भालू है या बंदर है, नाचते हैं, तो मैं भी ऐसा ही नाच रहा था। मुझे कौन नचा रही थी? वो वेशा मुझे नचा रही थी, और मैं भी एक क्रीड़ा मृग वत नाच रहा था, लेकिन आपसे फुल स्टॉप। नाचाओ प्रभु, नाचाओ, नाचाओ सही माते, आमी तो काष्ठेर पुतली, प्रभु मैं तो आपके हाथ की एक पुतली, आप कठपुतली वाले बनो प्रभु, और मुझे नाचाओ। ऐसे प्रभु पाद ऐसे प्रार्थना किए थे, भगवान मुझे आप नचाइए, आप मेरा चार्ज लीजिए, आप मुझसे शक्ति प्रदान कीजिए, आप मुझसे प्रचार करवाइए, आप मुझसे। तो यजामिल भी प्रार्थना कर रहा है, संकल्प ले रहा है वैसे हम लोग जैसे कथा सुन रहे हैं तो हमको भी क्या करना होगा हमें भी ऐसा कुछ संकल्प ये सब प्रोसेस है कई और जैसे हमने कल भी कहा हर व्यक्ति मोर और लेस अजामिल सरीखा ही होता है तो वह तो संकल्प ले उत्साह निश्चया धैर्यात् तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर् भक्ति प्रसिद्धति सिद्धि मिलेगी हम उत्साही होंगे रूप गोस्वामी का उत्साह निश्चय धैर्य तो ये सब अजामिल ऐसे संकल्प ले रहा है तो हुआ और इसी के साथ अब मैं घर में नहीं रहूंगा बस enough is enough जिसे कहते हैं बहुत हो गया it's already too late हाँ मैं अभी कितने साल का 88 वर्ष का हूँ मुझे वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए था कब 51 हो गया मतलब रिमाइंडर 51 ए वन में जाओ चलो चलो तैयार हो जाओ 51 में भी नहीं सुना फिर 52 और एक रिमाइंडर 52 फिर बीच में साल को छोड़ के फिर 57 58 भी है लेकिन इसने तो कुछ 30-40 साल लेट कर दिया था वानप्रस्थ आश्रम तो अब कहता है कि अभी तो वन के लिए प्रस्थान करूंगा इसने प्रस्थान किया सीधे गया हरिद्वार धाम की गंगा मैया की तो वाह तो वहां पहुंचकर मंदिर में रहने लगा वहां पर गंगा के तट पर साधु संगति में और सभी सारी मंगल आरती संध्या आरती अटेंड करता था और दिन में गंगा स्नान ध्यान धारणा और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये जब कर ही रहा था कुछ समय से अब तो क्या हुआ अब देखते क्या होता है हुआ कुछ हो रहा है कि नहीं तो उसने उन पुरुषों को देखा वो चतुर्भुज विष्णु दूत किरीट कुंडल धारी जो आए थे उस वक्त तो उसको नहीं ले गए यमदूत भी नहीं ले गए और विष्णुदूत भी नहीं ले गए उसको नरक में तो जाना ही नहीं था लेकिन वैकुंठ लौटने की पूरी तैयारी नहीं हुई थी फुल कृष्ण कॉन्शियस नहीं था तो मुक्त तो हो गया लेकिन अभी तक पूरा भक्त नहीं बना था लोग मुक्त हो जाते हैं मुक्ति की खूब बात करते हैं लेकिन मुक्ति से भी ऊंचा और भी मंजिल है वैकुंठ है भगवत प्राप्ति है कृष्ण दर्शन है तो वही विष्णु दूत आ गए तो उसने पुनः उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है और अब उसने वो समझ गया कि अब लौटने का समय हो चुका है, अभी आए हैं मुझे ले जाने के लिए आए हैं। तो हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनु, तो गंगा का दर्शन करते हुए प्रभु का नामों का उच्चारण करते हुए उसने अपने शरीर को त्याग दिया। तो शरीर वहाँ पड़ा है, उस शरीर से वो बाहर आ गया और अब उसका भी शरीर वैसा ही हो गया जैसे वो विष्णु दूतों का था। वे जैसे सुंदर थे, वे जैसे चतुर्भुज थे, ये भी चतुर्भुज हो गया, किरीट कुंडल और तेजस्वी। और उसका वो केवल आत्मा था, शुद्ध आत्मा। पहले ही आत्मा शरीर में था तो शरीर को त्याग दिया तो आत्मा निकल आया। अभी वो शुद्ध था, पवित्र था, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस था, गुणातीत गुणातीत था, सत्व रज तम गुण से परे था और कोई आशा पाश नहीं रहे, काम क्रोध लो मद मोह मत्सर से मुक्त। तब बस भगवत धाम ही गंतव्य स्थान। तो साकम विहाय सा हैमं विमानम आरुह्य, तो विमान में बिठाया गया। कैसा विमान था? सोने से बना हुआ, सोने का बना हुआ विमान था और बड़ा समलंकृत विमान। तो उसमें बैठा तो फिर विष्णु दूतों ने इंजन वगैरह शुरू कर दिए। इसने अपना बेल्ट वगैरह लगा दिया, टेक ऑफ हुआ, उड़ान भरा। विहाय सा महापुरुष किं करै, तो उन विष्णु दूतों के साथ आकाश मार्ग से ययो वो गया। कहा यत्र श्रियः पतिः, यह श्रिया मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मीपति जहाँ निवास करते हैं उस वैकुंठ के लिए प्रस्थान हुआ, वैकुंठ पहुंच गया। निताय गौर प्रेमानंदे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब बैठ रहे बैठ रहे, विष्णु रूप बस एक उठेंगे तो सब उठ जाएंगे। तो दोनों मिनट थांबा थांबा, जय कृष्ण। एक कार्यक्रम सुरू झाला तर मग सरस हरे कृष्ण। परम पूज्य श्री लोकनाथ साहेब महाराज की। तो सही भक्तों के लिए प्रसाद है और साथ ही में यहाँ पर अधिक मास का प्रथम दिवस है आज, सभी भक्तों के द्वारा दीपदान उत्सव भी है।
अजाम तो वैकुंठ पहुंच के लिए अजाम समाप्त नहीं हुई अभी तक।
अजामिल वैकुंठ पहुंचे, परंतु अभी कथा का तीसरा सत्र बाकी है जो कल होगा। तो हम
यमदूत पहुंच गए,
यमदूत अपने घर गए, विष्णुदूत अपने घर गए। आप अपने घर मत जाइए, कल वापस आइए जरूर, ताकि आप यमराज जी का प्रवचन भी सुन सके विष्णुदूत यमदूत के पश्चात।
कंक्लूजन है
और कल पूर्ण जो सारांश और अंतिम शिक्षा रहेंगी, तो कल निश्चित उपस्थित रहें। सर्वप्रथम महाराज जी का पुनः धन्यवाद देते हैं, महाराज जी इतने सुंदर रूप से इस कथा को बताएं। साथ ही में आज सभी भक्तों के लिए विशेष प्रसाद की सेवा की गई है और आप बहुत सुंदर दीपोत्सव का दर्शन भी कर रहे हैं। तो यहाँ सुंदर दीपोत्सव का श्रृंगार जो किया है श्री राधा गोपीनाथ जी के चरणों में अधिक मास के प्रथम दिवस में, वे है हमारे ऋषभ देव प्रभु। ऋषभ देव प्रभु यहाँ उपस्थित है, ऋषभ देव प्रभु उनका परिवार, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में इस अधिक मास में विशेष राधा गोपीनाथ जी की सेवा के लिए चावल और तेल की सेवा की हमारे साठवाने प्रभु और साठवाने माता जी यहाँ पर है, उपस्थित होंगे तो कृपया यहाँ आ जाए। साठवाने प्रभु जी कुड़े और साठवाने माता जी, वे महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्होंने अधिक मास के लिए विशेष राधा गोपीनाथ जी के लिए सेवा की है। हरि बोल।